हर प्रकार की बातें देखी हुई है। राम के पुजारी कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे ऐसे राम के भी पुजारी हैं, वो कृष्ण का नाम नहीं सुनना चाहते। राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर मिले गए। तो ये यादगार कहाँ की है? राम को त्रेता में कैसे? जब राम बाप कहा जाता है तो राम त्रेता में क्यों? राम तो सती के आदि में होना चाहिए। हाँ, त्रेता की शूटिंग जब शुरू होती है तो राम वाली सोल के द्वारा, राम वाले व्यक्तित्व के द्वारा संगम युग में निराकार राम शिव प्रत्यक्ष होता है। इसलिए राम को त्रेता में डाला गया और कृष्ण को द्वापर में क्यों ले गए? क्योंकि कृष्ण वाली सोल अर्थात तो ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज ब्रह्मा, ब्राह्मणों की संग में भी दुनिया में एडवांस पार्टी में द्वापर युग की शूटिंग के याद में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए कृष्ण को द्वापर में डाल दिया। तो कारण चाहिए कि कृष्ण को द्वापर में क्यों डाल दिया, राम को त्रेता में क्यों ले गए? वो समझते हैं राम बड़ा है और वो समझते हैं कि कृष्ण बड़ा है। कौन? राम के भक्त समझते राम बड़ा और कृष्ण के भक्त समझते कृष्ण बड़ा। ये भी शूटिंग कहाँ की हुई? ये भी संगम युग में ब्राह्मण ऐसे हैं, कोई समझते हैं वो बड़ा, कोई समझते हैं वो बड़ा, कोई समझते हैं कि शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं उनका पार्ट बड़ा, कोई समझते हैं कि साकार शरीर होते हुए भी सूक्ष्म पार्टधारी जो बने उनका पार्ट बड़ा। लेकिन इसमें बड़े छोटे की बात नहीं है। कोई का अंतर्भाग शरीर के द्वारा पार्ट और कोई का साकार और अंतर्भाग शरीर दोनों के द्वारा पार्ट है। टाइम टाइम की बातें हैं। तो राम और कृष्ण के भक्तों का आपस में झगड़ा हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना, तो ऐसे शूटिंग पीरियड में ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो कम अकल बच्चे हैं वो आपस में अपनी पार्टी बाजी खड़ी कर देते हैं। राम की पार्टी, कृष्ण की पार्टी, या शंकर पार्टी, या विष्णु पार्टी, ब्रह्मा पार्टी। बाप समझाते हैं हू बहू जैसे कल पहले समझाया था, फिर से समझा रहे। तुम फिर से आकर के बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी यह माध्यम है ही बेहद के बाप से बेहद के वर्षा लेने की। वो है सूर्यवंशी राजपद और सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन, उससे तो ऊंच कुछ होता नहीं है। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास होता है ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। पूरी राजधानी और अधूरी राजधानी कैसी होती है? हैं? नहीं, सतयुग की पूरी राजधानी कौन सी और अधूरी राजधानी कौन सी? अरे सतयुग में तो कई गार्डन्स हैं, 8-9 गार्डन्स हैं ना। हाँ, जो सतयुग में 21 जन्मों में से पहला जन्म है, संगम युगी फर्स्ट जन्म, वो राजधानी एयर कंडीशन समझो, फर्स्ट क्लास। तो बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज लेंगे या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास को लेंगे? उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार हो जाते, नंबरवार वारिस बना, तो तुम पीछे पीछे आकर के राज्य का पाएंगे, नहीं तो फिर थर्ड क्लास प्रजा बन जाएंगे। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, प्रजापद में भी फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, तो नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना, सुख तो वहां है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग हो जाते हैं। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की, तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं मालूम है? साहूकार वह बनते हैं जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। माँ बाप ये सब कुछ आपका है, भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर रत्नागर जादूगर, सौदागर में क्या महिमा हुई, क्या सौदा करते हैं, कौन सा सौदा करते हैं, क्या लेते हैं और क्या देते हैं, हैं? कौड़ी लेते हैं और हीरा देते हैं, ऐसा कोई सौदागर होगा जो कौड़ी ले ले और बदले में हीरा दे दे? और रत्नागर, रत्न होते हैं ना, हीरा माणिक पन्ना मोती नीलम, उन रत्नों का आधार, जैसे सागर में रत्न भरे हुए होते हैं, जो चाहे और जितने चाहे उतने रत्न ला सकता है, गहराई में जाता है तो सागर रत्न देता है, गहरा गोता मारने वालों को ज्यादा रत्न मिलेंगे। पर सागर में रत्न भी है तो कीचड़ भी है, और रत्नागर रत्न होते हैं ना, हीरा माणिक पन्ना मोती नीलम, उन रत्नों का आधार, जैसे सागर में रत्न भरे हुए होते हैं, जो चाहे और जितने चाहे उतने रत्न ला सकता है, यह गहराई से जाता है तो सागर रत्न देता है, गोता मारने वालों को ज्यादा रत्न मिलेंगे। पर सागर में रत्न भी है तो कीचड़ भी है, खोजने वाला चाहे उसमें से कीचड़ निकाले और चाहे उसमें से रत्न निकाले, तो रत्नागर भी गया हुआ है और जादूगर भी, ये महिमा बाप की है, कृष्ण की नहीं है। बहुत बड़ा जादूगर है, स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाए देते हैं, ब्रह्मा दादा लेखराज है तन पुरुष का, लेकिन क्या बनाए दिया, जगदम्बा बड़ी अम्मा मूछ वाली, ऐसा जादू कब देखा। फिर स्त्री को पुरुष भी बनाए देते हैं, रुद्रमाला के मणके हैं सब, क्या स्त्री पुरुष दोनों हैं, स्त्री चोले भी है तो पुरुष चोले भी हैं, तो स्त्री चोलों को भी क्या बना दिया, उनको भी भाव स्वभाव संस्कार के आधार पर पुरुष साजित कर दिया, तो जादूगर भी है। कृष्ण जादूगर नहीं है, कृष्ण ने तो वर्षा लिया है, सत्युग में प्रारब्ध पाई है, वो भी बाप का बना, तब प्रारब्ध पाई, अगर बाप का बनता नहीं तो सत्युग में प्रारब्ध भी नहीं पाता, तो प्रारब्ध कहां से पाई होगी, लक्ष्मी नारायण कटिंग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पांच दिन में प्रारब्ध बनाई होगी। भारत की महिमा बहुत है, भारत जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत ही परम पिता परमात्मा का बस क्लेश है। ये राज कोई की बुद्धि में बैठता नहीं। दूसरा देश परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत नंबर वन की है, परंतु गीता में नाम डाल दिया है कृष्ण का। उनको तुम भगवान नहीं कह सकते हो। भारतवासियों ने अपने को चमाट मारी है तो देखो कितना प्रभाव कम कर देते हैं। किसका प्रभाव कम कर देते हैं? भारत का। सारी दुनिया को तीर्थ के हिसाब से भारत के चक्कर काटना चाहिए, लेकिन कृष्ण का नाम डाल देने से, साकार का नाम डाल देने से सबकी बुद्धि छितर गई, भारत का प्रभाव कम हो गया। तो शास्त्र लिखने वालों ने भारत का इतना मर्तबा कम कर दिया है जो निराकार की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया। तो ब्राह्मण की संगमी की दुनिया में शास्त्र लिखने वाले कौन? यही देहधारी धर्मगुरु, और उन्होंने उसमें नाम डाल दिया पिताश्री ब्रह्मा का, माने कृष्ण की सोल का, जो संगम युग में पार्थधारी बनती है ब्रह्मा के रूप में। तो वो नाम डालने से अंतर क्या पड़ा कि भारत का जो मर्तबा ऊंचे होना चाहिए वो भारत का मर्तबा ऊंचे नहीं रहा, कम कर दिया। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और दूसरे कोई को फूल नहीं चढ़ाते। अगर वो मर्तबा कम न हुआ होता तो जो चैतन्य फूल चढ़ाए जा रहे हैं, कोई किसी पे चढ़ाई देता है, कोई किसी पे चढ़ाई देता है, वो चैतन्य फूल किसके ऊपर अर्पण किए जाते? सिर्फ एक बाप के ऊपर अर्पण किए जाते और किसी मनुष्य मात्र के ऊपर समर्पण नहीं किए जाते। सर्व का पतित पावन बाप उनका सोमनाथ मंदिर है, यादगार। शिव पर ही सभी आकर के माथा टेकते, परंतु ग्राम अनुसार एक बात को भूलने से शक्ति की हालत लोगों कैसी हो जाती है। इसलिए शिव बाबा आते हैं। क्या बात है? ये कौन से बात को भूलने की बात हो गई? ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सत्य की हालत कैसी हो जाती है, इसलिए शिव बाबा आते हैं। कोई तो निमित्त बनते हैं ना, निमित्त कौन हुआ? शिव बाबा आते हैं, वो शिव बाबा कौन हुआ? शिव बाबा जब आते हैं तो उनके आने का निमित्त कौन बनता है? एक बाप। अब बाप तो दोनों है, शिव भी आत्माओं का बाप है और प्रजापिता भी मनुष्यों का बाप है, तो इनमें निमित्त कौन बनता है? प्रजापिता निमित्त बनता है शिव बाबा की पधरामणी का। तो अब बाप कहते हैं शरीर कब, अपन को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा किसकी संतान हूँ ये कोई जानते नहीं है। तो वंडर हुआ ना, कहते भी है वो गॉड फादर, तो आत्मा किसकी संतान है? आत्मा संतान है परमात्मा की। नाम ही क्या कहा जाता है, परम पिता परमात्मा। जैसे शिव शंकर नाम देते हैं तो शिव नाम पहले शंकर नाम बाद में, ऐसे ही परम पिता, पिताओं में जितने पिताएं हैं उनमें सबसे परम, बड़े से बड़ा पिता, बड़े से बड़े पिताएं, धर्म पिताएं हो गए बड़े से बड़े, और फिर उन धर्म पिताओं का भी बाप प्रजा पिता, और फिर उसका भी पिता कौन, परम पिता, उससे बड़ा पिता कोई होता नहीं। और जब कहते हैं परमात्मा तो जरूर जन्म मरण का चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच कोई भेंट करने की बात है, जिसको कहते हैं परमात्मा। तो परम पिता शब्द आया सुप्रीम सोल शिव के लिए, और वो जिसको निमित्त बनाकर आधार लेता है वो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में परम हो गई, पाठधारियों के बीच में हीरो पाठधारी परमात्मा। तो बताया कि अब तुम बच्चे निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, परमात्मा की संतान। तो इस बात को कोई जानते नहीं है, 84 जन्मों में कोई नहीं जानता कि मनुष्य शक्ति का पिता कौन है, और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता कि मनुष्य शक्ति का पिता कौन है और कहाँ है। वो परम पाठ बजाने वाली आत्मा कौन सी है जो मनुष्य आत्माओं के बीच में विशेष हीरो पाठ बजाने वाली है, कोई नहीं जानती। तो वंडर हुआ ना क्या, कि शक्ति रूपी रंगमंच सब पाठधारी हैं और हीरो पाठधारी को कोई जानते ही, कहते भी हैं वो गॉड फादर रहम करो, रहम करो, क्या बेरहमी है, है? सुप्रीम सोल भी बेरहमी है, सुप्रीम सोल की किसी के ऊपर रहम की दृष्टि और किसी के ऊपर बेरहम की दृष्टि हो सकती है, फिर किससे कहते हैं वो गॉड फादर रहम करो। जरूर वो निराकार बाप जिस साकार में प्रवेश करता है उसका आत्माओं के साथ पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, तो वो हिसाब किताब चुकू करने के लिए वो किसी के साथ कठोर पाठ बजाता और किसी के साथ नजुल पाठ बजाता, क्योंकि हिसाब किताब पूरा जरूर करना है। तो कहते हैं वो गॉड फादर रहम करो, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे ये कोई को पता नहीं। जयंती मनाते हैं, अब ऐसा भी कोई होगा कि कोई का जन्मदिन मनाए और जिसका जन्मदिन मनाए उसके बारे में ये जानता ही नहीं होगा कब जन्म लिया। नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जाए, गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाए, तो किस आधार पर मनाया जाएगा, जानता होगा ना कि अमुक वर्ष में 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ तब तो मनाएगा ना। लेकिन अगर पता ही ना हो कि कब जन्म हुआ तो किस आधार पर जयंती मनाई जाती, मनाई जा सकती है क्या, नहीं मनाई जा सकती। लेकिन शिव जयंती, शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन शिव जयंती ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ब्राह्मण मनाते हैं या दुनिया वाले मनाते हैं, वो तो महाशिवरात्रि मनाते हैं, वो जयंती अक्षर नहीं जानते। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो जयंती मनाते हैं शिव जयंती, उनसे पूछो कि तुम्हें कैसे पता चला कि शिव ने कब जन्म लिया। ऐसे ही भक्ति मार्ग वालों की देखा धूनी, शिवरात्रि मनाए देते हैं माघ मास में, तो ये तो भक्ति मार्ग हो गया, देर चाल हो गई। तो कब आए ये कोई को पता नहीं। ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में भी कोई को पता नहीं है। और 5000 वर्ष की बात है, बात ही आकर के नई दुनिया सत्य की स्थापन करते हैं। सत्य की आय लाखों वर्ष तो नहीं है, तो घोर अंधेरा हो गया ना। गीता का उपदेश कितने आकर के सुनते हैं, परंतु न पढ़ाने वाला और न पढ़ने वाला कुछ समझ सकते हैं। पढ़ाने वाले भी ढेर हैं गीता के, वो भी उसके उपदेश को मर्म को नहीं समझ सकते, तंत्र को नहीं समझ सकते, और पढ़ने वाले तो समझेंगे ही क्या। लेकिन बाप उस गीता के उपदेश को कितना सहज करके बताए देते हैं, सारी बुद्धियां भूल जाती हैं। बाप कहते हैं सिर्फ याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही अलंकार सभी दिए हैं, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है, वास्तव में देवताओं को थोड़ा ही दिया जाता है। देवताएं कोई ज्ञान का शंख फूकेंगे क्या? ये मुख ही शंख है। ब्राह्मणों को ही ये ज्ञान का शंख बजाना होता है। जैसे शंख की आवाज होती है तो चारों ओर बराबर बराबर आवाज फैलती है, तो ऐसे ही ब्राह्मणों को भी किसी से ईर्ष्या देश किए बगैर, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, परमात्मा का संदेश सबको देना चाहिए। तो ये शंख वास्तव में ब्राह्मणों का है, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं देते, देते हैं देवता को, विष्णु देवता को। फूल भी दिया है, कीचड़ में कमल फूल समान जीवन बिताने की यादगार। तो विष्णु क्या कीचड़ में रहता है? विष्णु तो सत्युग में होता है, वहां तो कीचड़ की बात ही नहीं। तो वास्तव में है अभी ब्राह्मणों की बात है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कीचड़ ही कीचड़ है, सब घर ग्रस्त के कीचड़ में रहे पड़े। जो ब्राह्मण है असली, और वो ब्राह्मण कीचड़ में रह करके भी अपनी बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लगाए हुए, बुद्धि से न्यारे और प्यारे होकर के रहते हैं, कीचड़ का अंश मात्र भी लेस उनकी बुद्धि में टच नहीं हो सकता। तो ऐसे जो ब्राह्मण है संपूर्ण स्थिति को पाए हुए, उन संपूर्ण ब्राह्मणों की यादगार को विष्णु फरिश्ता बनाया हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण संपूर्ण सो फरिश्ता। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते हैं तो अलंकार गायब हो जाते हैं, क्योंकि आज ब्राह्मण है कल शूद्र बन पड़ते। तो ब्राह्मणों के अलंकार हैं, परंतु ब्राह्मणों को दे कैसे? आज अलंकार दें और कल गिराए देवे तो अलंकार ही टूट जाएंगे, इसलिए ब्राह्मणों को अलंकार नहीं देते। माया देरी नहीं करती है, अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर नहीं चले, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह से चमाट मार करके मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना, थप्पड़ मार करके मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसी है, गुस्से में आकर चमाट मार देती है, मुंह फेर देती है। किससे मुंह फेर देती है? परमात्मा बाप की तरफ जो मुंह, हाँ यानी जो परमात्मा बाप की ओर सन्मुख थे।
और जीवन बैठ जाता है, तो बस अब नया मकान तैयार होगा, वो बैठेंगे।
ये पुराना मकान छोड़ दे तो यहाँ कौन से मकान की बात है? संगठन की बात संगठन की बात है परमात्मा का तो बनाए रहा है उसके बच्चों का काम क्या रह गया? पुराने संगठन ऋषि किलो को मकान को तोड़ देते बनाने का काम कौन करता है? पाप। और तोड़ने का काम कौन करते है? रावण की तो पुरानी दुनिया है वो काय के लिए तोड़ेगा? रावण का तो मकान ही है पुरानी दुनिया वो उसे तोड़ेगा क्या? वो नहीं तोड़ता है। तोड़ेगा तो रावण की लंका में आग लगाएगा तो राम संप्रदाय वाले ही लगाएंगे ना। तो बताया बच्चों की बुद्धि में रहता है कि पापा अब नया मकान बना रहा है नया मकान तैयार होगा हम कहते हैं और ये पुराना मकान छोड़ दे तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बन सुनाई बुद्धि की हथेली में नई दुनिया बैठाएगी बुद्धि ने नई दुनिया का जी का मतलब 152 पेज अर्थात दूसरे पेज का मत पुराना मकान तोड़ देंगे क्योंकि नया मकान बन गया अर्थात स्कूल में नहीं बन चुका कहाँ बन चुका बुद्धि रूपी हथेली पर जैसे कृषि की हथेली पर क्या दिखाते हैं नई दुनिया कल और कितने में लिख दिया है कि कृष्णा बहाने वाला है जिसकी बुद्धि रूपी हथेली पर बैठ के दिखाया हुआ है तो कोई स्कूल कटने की बात हुई क्या? बच्चे के स्कूल रूप में जन्म लेने वाले बच्चे की बात हुई क्या? नहीं ये तो देह की बात है माना ब्रह्मा की सोल है कृष्ण की सोल कोई ब्राह्मण बच्चा है जिसमें प्रवेश होकर के अपनी बुद्धि रूपी हथेली पर नई दुनिया का सारा कच्चा लेकर के पुस्तक होने वाला है कौन सी दुनिया ब्राह्मणों की पसंद तो आज भी लोग पूछते हैं तुम तो पहले चित्र लगाते थे चंद्रों पर कि कृष्णा आ रहे हैं ग्रह आ रहे हैं कृष्ण विनाश होने वाला है उसके बाद ठीक ही कृष्णा आ रहे हैं तो कहाँ आ रहे हैं चक्र तो सबका खत्म हो गया तुम्हारी चक्रवर्त की घोषणा भी खत्म हो गई तो क्या बताना है तुमको बताना है कि दुनिया का हर काम पहले शिक्षण में संपन्न होता है फिर स्कूल में संपन्न होता है कोई मकान बनाना होता है तो पहले बुद्धि में उसका नक्शा आता है फिर कागज में नक्शा तैयार किया जाता है फिर स्कूल में बनाया जाता है तो ऐसे ही परमात्मा ने हमको जो वैश्य की दुनिया का नक्शा दिया वो हमारी बुद्धि रूपी हथेली के लिए दिया बाहर की दुनिया के विनाश की बात संकेतर की नहीं थी तो बाप ने हथेली पर बैठ लाया है वह बैठक लाया है कहते हैं लाड़ले बच्चे तो आत्मा से बात करते हैं ना हथेली पर बैठ किसके होगी जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे होंगे ये प्रैक्टिस जिन्होंने पत्नी की होगी उन्हीं की बुद्धि रूपी हथेली में बैठ दिखाई देगी वो नक्शा उनको स्पष्ट दिखाई देगा तो आत्मा से बाप बात करते हैं इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख ही रहे कौन देखने वाले कौन बाप इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं आत्मा से बात भी करते हैं ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं राज आदि भी वहां बहुत मिलाते हैं तो ये कभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल करके आती है अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं इनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी
दूसरों से पूछा भी जाता है। आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता था अगर आप राजी खुशी हो तो वो सुनाती। तो ये सभी ड्रामानुसार चलता है। कभी कभी बोलते भी हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। तो ये सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी हुई है। को एक तरह दिखाते हैं कि आत्मा ने प्रवेश किया। ये मिसाल दिया बाबा काश्मीर के ब्राह्मणों का। मीर कहते हैं सहजादा को और मीरा कहा जाता है सहजादी को। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जब ये मुरली चलाई जा रही थी तो उस शूटिंग पीरियड में शाह कौन और उसका शाह और शाहजा भी कौन? ब्राह्मणों की दुनिया में शाह की शूटिंग करने वाला कौन? शाह माना राजा और शाहजा भी माना राजकुमारी। शाहजादा माना राजकुमार। कौन हुआ शाह और कौन हुए शाहजादा और शाहजादी? जिस समय ये मुरली चलाई गई ब्रह्मा के मुख से, ब्राह्मणों की दुनिया में राजा कौन हुआ? राजा की शूटिंग करने वाला कौन हुआ? अरे ब्रह्मा। तो ब्रह्मा हो गया शाह। यानी सत्युग उस समय तो शाह नहीं है लेकिन शूटिंग करने वाला बना ना। माना सत्युग में जाकर के वो शाह बनेगा, राजा बनेगा। और शाहजादी और शाहजादा कौन हुए? शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा ने कौन सी ऐसी आत्माएं थी जिनको विशेष मान लिया? यानी सभी किताबों में सबसे ज्यादा खाती होती है कुमार का। ऐसे बोला तो कुमार का दादी में शाहजादी, सत्युग में शाहजादी बने क्योंकि आप सुनते हैं। और फिर किशोर बाबू उनके हाथ से किसी का सारा कारोबार तो वो कौन हो गया? शाहजादा मीर साहब और मीरा दोनों हो गए। तो उनका अपना कोई नगर भी होगा। इनका मीर का तो मीर साहब का जो नगर है उसका नाम रख दिया साहब। पाकिस्तान की ज्यादा नदी उसका नाम क्या रख दिया? काशी। भारत का सिरमौर है। वहाँ फूल बहुत होते हैं। सारे फूल कहाँ अर्पण किए जाते हैं? प्रकृति ने सारे ही फूलों को कहाँ अर्पण कर दिया? काश्मीर। तो यहाँ तो है चैतन्य फूलों की बात। ड्रामा अपने अनुसार ब्राह्मणों की दुनिया के जितने भी फूल समर्पित होते हैं वो कहाँ और किस पर अर्पण होते हैं? काश्मीर। तो वीर का जो पुर है जिसका नाम है काश्मीर, काश कहते हैं तेज। तो वहाँ ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं क्योंकि ब्राह्मणों की तो ढेर कुड़िया होती हैं। उनमें गौतम ऋषि भी हुए। तो बोला कि सात आदि वहां बहुत खिलाते हैं। माना ड्रामा खाने की प्रवृत्ति वहां बहुत चलती है। क्या खान पान है भोग आदि लगाने वहां बहुत चलता है। तो बाबा ने बताया कि ये सभी साक्षात्कार का राज है। जो ड्रामा में ये नूद है तो उन ब्राह्मणों में आत्मा आती है, पितर की आत्मा को बुलाते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में पितर कौन हुए? ब्रह्मा सरस्वती। तो ब्रह्मा की सोल को ब्राह्मण की सोल व्यक्तित्व में बुलाया जाता है। फिर उनसे पूछा जाता है आप राजी खुशी हैं, तो कभी कभी बताते हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। यानी गुलजार दादी में जब ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो कभी कभी इशारे भी देती है कि मैंने कहाँ जन्म लिया है। मुरलियों में भी ऐसे महावाक्य हैं, गांधी ने कहाँ जन्म लिया, राजकोट में जन्म लिया। फिर साक्षात्कार दिखाते हैं तो उसमें कहते हैं नेपाल में जन्म लिया, उन्होंने स्थूल नेपाल समझ लिया। है वास्तव में नई दुनिया का पालना करने वालों का स्थान, यानी ब्राह्मणों की जो नई दुनिया का संगठन है उसमें जो पालना करने का स्थान है वो है नेपाल। तो वहां कृष्ण की स्थूल ने जन्म लिया, राजकोट में जन्म लिया, माना राजाओं का जो किला बनने वाला है। जैसे मुरली ने बोला ये ब्राह्मणों का संगठन एक ऐसा किला बन जाएगा जिसमें कोई भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। तो वो किला है, किला माना संगठन। माला तो कौन सी माला पहले तैयार होती है, रुद्र माला। रुद्र के द्वारा जो माला बनाई जाती है रौद्र रूप धारण करने वाले के द्वारा, उसका नाम रख दिया है रुद्रमाला। तो रुद्रमाला का संगठन वो ही हो गया राजकोट, राजाओं का कोट माना किला। उसमें जाकर के जन्म लेती है। ऐसा इशारा कई बार है अव्यक्तवाणियों में भी दिया और मुरलियों में भी दिया कि ब्रह्मा की सोल को कहाँ कार्य करना है। जैसे बोला घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्त तन द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जावे। जैसे इशारा दिया कि बाप दादा ने भी सेवा स्थान चेंज किया है, जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया। इसे साबित हो गया, इशारा मिल गया कि अभी तक सेवा थी पढ़ाई पढ़ाने की, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई शांत एकांत स्थान में पढ़ाई जाती है, तो माउंट आबू में पढ़ाई पढ़ाई। अब जो स्थानांतरण हुआ है उसका मकसद क्या है, उसका मकसद है, उसका अहम ऑब्जेक्ट है राजधानी स्थापन करना। पढ़ाई तो पूरी हुई, पढ़ाई के बाद बात आती है पद पाने की। तो पद तो तब पाया गया जब राजधानी तैयार हुई। तो राजधानी स्थापन करने के लिए बाप दादा ने सेवा स्थान चेंज किया तो कहाँ सेवा स्थान चेंज करेंगे, दिल्ली। तो 76 की ये बात हुई तो उस समय से बाप दादा ने सेवा स्थान चेंज किया। फिर ये भी इशारा दे दिया कि ब्रह्मा की हजार भुजाएं कही जाती हैं, तो भुजाएं चलाने वाला होगा तब तो भुजाएं चलेंगी ना। कि भुजाएं चलाने वाला सर न हो और भुजाएं अपने आप चलती रहें, ये कैसे हो सकता। हजार भुजाएं सब सहयोगी अपने आप एक साथ बनेगी या धीरे धीरे करके सहयोगी बनेगी, कभी कोई भुजा सहयोगी बनेगी कभी कोई भुजा सहयोगी बनेगी। तो बाबा ने तो इशारे दे दिए कि किस घर में कहाँ किस प्रकार जन्म लेने वाले हैं, कहाँ जन्म लिया। तो बताते हैं ये सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी हुई है, जो बताते हैं वो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है, आगे टेबल में भी बैठ बुलाते थे बाबा को तो सभी अनुभव, अब टेबल में तो आत्मा नहीं आ सकती। जिसने जो कुछ किया वो ड्रामा में था सो हुआ। तो ड्रामा को कितनी अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है, भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, तो ये सभी नूद है, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। नए आदमी न समझने के कारण मुझे जाते हैं, क्योंकि बाप तो जादूगर है ना, समझते हैं मैं भी ड्रामा के बस में हूँ, ऐसे नहीं कि ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी को अपना अपना भोगना ही, तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है क्योंकि तुम सभी से पुराने बच्चे हो। क्या कहा, यज्ञ का सबसे जास्ती बोझा किनके ऊपर है, कितने पुराने, 84 जन्म पुराने। जो 83 जन्म पुराने हैं उनकी उतनी जिम्मेवारी नहीं,
और न वो उस जिम्मेवारी की तरफ ध्यान देंगे कि नई दुनिया और नई दुनिया का संगठन कैसे बनेगा। उनकी बुद्धि में ये बात आएगी भी नहीं, आएगी उन्हीं की बुद्धि में जिनके ऊपर बोझ है, क्योंकि पुराने हैं। सतो प्रधान से एकदम तुम तमो प्रधान बन गए। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वो तो अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे शुद्ध बन गए, तो वही ब्राह्मण बन गए, भी संप्रदाय बनेंगे। तो ये बातें बाप बिगड़ कोई नहीं समझा सकता है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के कौन है और कैसे आते हैं। इस्लाम वंशी बौद्धि वंशी क्रिश्चियन वंश के लोग वो इधर आकर के नहीं समझेंगे। समझेंगे कौन? नई दुनिया का संगठन बनाने की बात वही समझेंगे जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने में आने वाले हों, 84 जन्म लेने वाले हों। तो बाप को ये बच्चे कितने मीठे लगते हैं। कौन से बच्चे? 84 जन्म लेने वाले, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले नहीं, पूरे 84 जन्म लेने वाले ब्राह्मण धर्म के पक्के बच्चे, जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं, पक्के बीज हैं सारी दुनिया के। वो बच्चे कितने मीठे लगते हैं, कहते हैं तुम भाई कल पहले वाले मेरे बच्चे हो। कौन से बच्चे? कल पहले वाले माना यज्ञ के आदि में जो थे वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर के पढ़ाता हूँ। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान वाच तो जरूर शरीर से वाच करेंगे ना, है? जब कहते हैं निराकार भगवान वाच तो निराकार क्या बिंदी उवाच करेगी क्या? निराकार उवाच शब्द लगा, वो उवाच माना बोलना, तो जरूर निराकार साकार शरीर के द्वारा उवाच करेंगे। तीसरा पेज, शरीर अलग हो जाता तो आत्मा उवाच कर नहीं सकती, आत्मा डिटेच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी बाप, तुम भी अशरीरी हो जाओ। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, है? ये हठ क्रियाएं तो देहधारी धर्मगुरुओं ने सिखाई है। प्राणायाम चढ़ाना, आसन आदि लगाना, ये कोई बाप ने नहीं सिखाया। समझना है मैं आत्मा अविनाशी, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वो पार्ट सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वह पार्ट चलता है किसका, है? किसकी बात हो रही है? अरे बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वो पार्ट सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहाँ पार्ट चलता है, फिर यहाँ ज्ञान मार्ग में आकर ज्ञान देता हूँ। इसकी बात हुई, प्रजापिता की बात हुई या सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की बात हुई? प्रजापिता की बात हुई। तो मुरलियों में कहीं बाप शब्द प्रजापिता के लिए यूज होता और कहीं सुप्रीम सोल के लिए यूज, अब कहीं दोनों के लिए यूज होता? बाप खुद कहते हैं भक्ति मार्ग है भटकने का मार्ग, भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब दिया ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है? तो ज्ञान भी जब लेना है तब पता पड़े कि इसका नशा क्या है। जिन्होंने एडवांस नॉलेज ली होगी, फोर्स पूरा लिया होगा, उनको उसके फोर्स का पता लगेगा। जिन्होंने ली ही नहीं तो उसके टेस्ट का उनको पता नहीं पड़ सकता। ज्ञान से सदगति जरूर होती है। क्या ज्ञान आता है? परमात्मा बाप से, और अज्ञान आता है रावण से। तो ज्ञान से जो परमात्मा बाप से आ रहा है उसकी पहचान क्या है कि ये परमात्मा का ज्ञान है? पहचान बताई कि उससे सदगति जरूर हुई। तो क्या सदगति हुई? एडवांस नॉलेज जो बाप आकर के पढ़ाए रहे हैं तो लेने वालों की सदगति हुई क्या है? हाँ, बौद्धिक स्तर की बात है, क्योंकि सदगति की भी शुरुआत पहले सूक्ष्म रूप में होगी, फिर स्थूल में शरीर की सदगति होगी। तो थीरी पर बहस वाली बात है कि सदगति की शुरुआत भी मन बुद्धि रूपी आत्मा से होती है। जिन्होंने इसे ज्ञान को लिया होगा वो फील करेंगे कि हमारी मन बुद्धि पहले तो देह और देह की दुनिया में लगी रहती थी, और अब ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में लगती है। तो बुद्धि की सदगति हुई या दुर्गति हुई? सदगति हुई। तो जो ज्ञान लेते हैं उनको पता पड़ेगा कि ज्ञान से सदगति जरूर होती है, और जिस ज्ञान से सदगति हो वही ज्ञान परमात्मा बाप का दिया हो। ज्ञान से ही सदगति कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूं, सर्वोदय लीडर कहते हैं ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है, जो 500 करोड़ के ऊपर दया कर देता है। सभी कहते हैं भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं कौन? सर्वोदया लीडर। उन्होंने तो विनोबा भावे का नाम दे दिया, क्या टाइटल दे दिया, सर्वोदया लीडर। लेकिन वास्तव में वो सर्वोदया लीडर तो ये नहीं। उन्होंने क्या किया विनोबा भावे ने, क्या किया है? भूदान मांगा। तो लोगों ने अपनी जमीन, जो बेकार सी जमीन थी जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो जमीन उनको दान में दी। तो ये सब संगम युग की यादगार चली आ रही। वास्तव में परमात्मा बाप जब आते तो जो आप अपूरे जैसी आत्माएं हैं वो रुद्रमाला में सब आकर की सकती हो। जन्म जन्म मंत्र के राजाएं हैं जिन्होंने पता नहीं कितने पाप किए, ऐसी पाप आत्मा जिनमें अनेक जन्मों की बदबू भरी हुई है विकर्मों की, वो आकर के परमात्मा बाप के पास इकट्ठी होती है। नाम पड़ता है माउंट आबू, बदबू का पहाड़ सब इकट्ठा हो जाता है। तो दुनिया में गंदक लाने की फैलेगी कि नहीं फैलेगी? ग्लाने की गंध तो जरूर फैलेगी, लेकिन बाप ग्लानी को भी महिमा में बदल देता है, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। तो कहते हैं भगवान रहम करो, वो है सभी के ऊपर दया करने वाला। साहूकार लोगों से उन्होंने भू दान लिया, भू माना जमीन, धरणी। धरणी कोई दूसरी चीज नहीं है, स्थूल धरणी की बात नहीं है। जो चैतन्य सर्वोदया लीडर है बेहद का, उसने कोई स्थूल धरणी का दान नहीं लिया। संगम युग में काय का दान लिया? चैतन्य जो धरणी है, चैतन्य धरणी कौन सी? कन्या माता है वही चैतन्य धरणी, बुद्ध रूपी धरणी उनकी पवित्र होती है। ये भारतवर्ष की कन्या माताओं की धरणी ही पवित्र होती है। पुरुषों को तो सबको दुर्योधन के शासन बताई दिया, वही इस पवित्र धरणी में परमात्मा पाप को धारण कर सकती है। बाकी पुरुषों की बुद्धि तो अनिश्चय में आ जाती है जब परमात्मा हैवी पार्ट बजाता है। तो कहते हैं हे भगवान रहम करो, अब बाप तो सभी पर रहम करते हैं, बाकी सब है खुद के रहम करने की बात। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते, उसमें तत्व भी आ जाते। ये काम एक परमात्मा का ही है जो सारी दुनिया को भी पवित्र बनाता है और पांच तत्वों को भी पवित्र बनाता है। पांच तत्वों को कैसे पवित्र बनाएगा? हाँ, पांच तत्वों का बना हुआ है शरीर, तो पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा का रिफायरमेंट होता है ज्ञान के द्वारा। और जब मन बुद्धि रूपी आत्मा सुधर जाती है, सदगति वाली बन जाती है, परिष्ठा बन जाती है, पंच की दुनिया वालों से देह की दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं रहता है, नष्टों को हो जाती है, तब शरीर मन पांच तत्वों का भी सुधार होता है। इसके द्वारा परमात्मा यानी परम पार्ट बजाने वाला जो हीरो पार्टधारी है उसके संग के रंग से कोई विशेष आत्माएं हैं बीज रूप में जो पहले अपनी कंचन काया बना और उनके आधार पर सारी मनुष्य शक्ति में जो विशेष आत्माएं देवात्माएं हैं 84 जन्म लेने वाली उनकी भी कंचन काया बनती तो वो सभी पर रहम करते उसमें तत्व भी आ जाते पांच तत्वों का भी रिफॉर्मेंस होता है तो ये काम एक परमात्मा का है तो सर्वोदय आकार से देखो कितना बड़ा है एकदम सर्व के ऊपर दया कर देते स्वर की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता वहां नंबर वन फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं दुख देने वाले जानवर मक्खी मच्छर आदि वहां होते ही नहीं कहां स्वर्ग क्योंकि मच्छर मक्खी मच्छरों को तो सबको यहां से वापस ले जाते हैं सब आत्माएं क्या निशान वो निशान दिया मच्छरों से सब वापस जा रहे जैसे मक्खी मच्छरियों को मच्छरों का झुंड होता है वो तो सब वापस चले जाएंगे फिर कहाँ आकर के पैदा होते हैं जैसे वो त्रेता में वो मक्खी मच्छर आकर के पैदा नहीं होंगे फिर नरक की दुनिया में आकर के पैदा होना शुरू तो सतयुग में गंध करने वाले कोई प्राणी नहीं होते गंध करने वाले मनुष्य भी मनुष्य आत्माएं भी वहां नहीं होती जो मक्खी मच्छर जैसा पार्ट बजाए चारों ओर गंध फैलाने का यहाँ भी बड़े आदमी के घर में देखो कितनी सफाई रहती बड़े आदमी के घर में मक्खी मच्छर देखने को भी नहीं मिलता कहीं भी तुम मक्खी नहीं देखेगी कोई मच्छर आदि अंदर घुस नहीं सकता तो पांडवों का किला भी ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई भी मक्खी मच्छर प्रवेश कर सके कोई शिकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा जो गंध करने वाला वाइब्रेशन की गंध करने वाला भी प्रवेश नहीं कर सकेगा दृष्टि की करप्शन फैलाना तो दूर वाचा की और कर्मेंद्रियों की करप्शन फैलाना तो दूर ऐसा ये पांडवों का संगठन किला बन जाते तो कौन से बड़े आदमी को मिसाल दिया बाबा का इशारा किस तरफ है? आज की दुनिया में आज के भारत में बड़ा आदमी कौन माना जाता है बिरला व्यापारी का मिसाल देते क्या नाम दिया बिरला व्यापारी गाय का मंदिर बनाया लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते वो तो जड़ लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाने वाला बिरला व्यापारी है और यहाँ